नमस्कार, आदाब। कहानियों का गुच्छा में पहली कहानी श्रृंखला का नाम है मंटो की मस्तियां। पहले तरक्की पसंद मेरी तहरीरों को उछालते थे कि मंटो हम में से है, अब यह कहते हैं कि मंटो हम में नहीं है। मुझे ना उनकी पहली बात का यकीन था ना मौजूदा पर है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मंटो किस जमायत में है तो अर्ज करूंगा कि मैं अकेला हूं। सआदत हसन मंटो। सआदत हसन मंटो का जन्म 11 मई 1912 को जिला लुधियाना के गांव पपड़ौदी में हुआ। उनके 43 साल के छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने अपनी कहानियों और किस्सों से 20वीं सदी के बेहतरीन उर्दू लेखकों में अपना नाम शुमार किया। मंटो की कहानियां समाज की कठिन सच्चाइयों का अक्स दिखाने के लिए जानी जाती थी, पर मंटो के खुश मिजाज और मजाकिया किस्सों का जिक्र शायद ही कभी हुआ हो। मंटो की मस्तियां मंटो की कहानियों का वो गुच्छा है जिसमें उन्होंने मियां बीवी की रोज की नोकझोंक को बड़े मजाकिया अंदाज में गढ़ा है। हर कहानी में आप सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी की एक बहस सुनेंगे। इनमें कोई नाम नहीं बताए गए हैं क्योंकि ये मियां बीवी कोई भी मियां बीवी हो सकते हैं। मंटो की मस्तियां को मजेदार और चटपटा बनाने में मेरा साथ देंगी अनामिका नायडू। तो सुनते रहिए कहानियों का गुच्छा में मंटो की मस्तियां, मुदित सिंघल और अनामिका नायडू की आवाजों में। मंटो की मस्तियां में आज की कहानी है तस्वीर। भाई बच्चे कहाँ हैं?
मर गए हैं।
सबके सब?
हाँ सबके सब। वैसे आपको आज उनके मुतालिक पूछने का क्या ख्याल आ गया?
भाई मैं उनका बाप हूँ।
आप जैसा बाप खुदा करे कभी पैदा ही ना हो।
तुम आज इतनी खफा क्यों हो? मेरी समझ में नहीं आता, घड़ी में रत्ती घड़ी में माशा हो जाती हो। भाई दफ्तर से थक कर आया हूँ और तुमने ये चकचक शुरू कर दिए। बेहतर था कि मैं वहां दफ्तर में ही पंखे के नीचे आराम करता।
पंखा यहाँ भी है, आप आराम तलब हैं, यही आराम फरमा सकते हैं।
तुम्हारा ये तंज कभी नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है ये चीज तुम्हें जहेज में मिली थी।
देखिए मैं कहती हूँ कि आप मुझसे इस किस्म की खुराफात न बका कीजिए, आपके दीदों का तो पानी ही ढल गया है।
यहाँ तो सब कुछ ही ढल गया है, तुम्हारी वो जवानी कहाँ गई? मैं तो अब ऐसा महसूस करता हूँ जैसे 100 बरस का बुढ़ा हूँ।
ये आपके आमाल का नतीजा है, मैंने तो खुद को कभी उम्र रसीदा महसूस नहीं किया।
मेरे आमाल इतने स्याह तो नहीं, और फिर मैं तुम्हारा शौहर होते हुए क्या इतना भी महसूस नहीं कर सकता कि तुम्हारा शबाब अब रूबा तनज्जुल है?
देखिए मुझसे ऐसी जबान में गुफ्तगू कीजिए जिसको मैं समझ सकूं। अब ये रूबा तनज्जुल क्या हुआ?
अरे छोड़ो इसे, आओ मोहब्बत प्यार की बातें करें कुछ।
आपने अभी अभी तो कहा कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप 100 बरस के बुढ़े हैं।
भाई दिल तो जवान है।
आपके दिल को मैं क्या कहूँ, आप इसे दिल कहते हैं? अरे मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगी कि एक पत्थर का टुकड़ा है जो इस शख्स ने अपने पहलू में दबा रखा है और दावा ये करता है कि उसमें मोहब्बत भरी हुई है। अरे आप मोहब्बत करना क्या जाने, मोहब्बत तो सिर्फ औरत ही कर सकती है।
आज तक कितनी औरतों ने मर्दों से मोहब्बत की है, जरा तारीख का मुताला करो। हमेशा मर्दों ने ही औरत से मोहब्बत की और उसे निभाया, औरतें तो हमेशा बेवफा रही हैं।
झूठ, इसका अव्वल झूठ इसका आखिर झूठ, बेवफाई तो हमेशा मर्दों ने ही की है।
और वो इंग्लिस्तान के बादशाह ने एक मामूली औरत के लिए जो तख्तो ताज छोड़ दिया था, वो क्या झूठी और फर्जी दास्तां है?
बस एक मिसाल पेश कर दी और मुझ पे रौब डाल दिया। हाँ
भाई तारीख में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं। मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता, कमबख्त अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर अपनी महबूबा को जरा सी भी इजा पहुंचने नहीं देगा। तुम नहीं जानती हो मर्द में जब वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो कितनी ताकत होती है।
हाँ सब जानती हूँ, आपसे तो कल अलमारी का जमा हुआ दरवाजा भी नहीं खुल सका, आखिर मुझे ही जोर लगाकर खोलना पड़ा।
देखो जानम तुम ज़ाती कर रही हो, तुम्हें मालूम है कि मेरे दाहिने बाजू में रेह का दर्द था। मैं उस दिन दफ्तर भी नहीं गया था, सारा दिन और सारी रात पड़ा कराहता रहा था। तुमने तो मेरा कोई ख्याल ना किया और अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने चली गई।
जाइए, आप तो बहाना कर रहे थे।
लाहौल विला, यानी मैं बहाना कर रहा था। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुम कहती हो कि मैं बहाना कर रहा था। लानत है ऐसी जिंदगी पर।
हाँ, ये लानत मुझ पर भेजी गई है।
तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए। मैं अपनी जिंदगी का रोना रो रहा था भाई।
हाँ, आप तो हर वक्त ही रोते रहते हैं।
और तुम हंसती रहती इसलिए कि तुम्हें किसी की परवाही नहीं। बच्चे जाए जहन्नुम में, मेरा जनाजा निकल जाए, ये मकान जलकर राख हो जाए, मगर तुम हंसती रहोगी। ऐसी बेदिल औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी।
अच्छा, कितनी औरतें देखी है वैसे आपने अब तक?
हजारों लाखों, सड़कों पर तो आजकल औरतें ही औरतें नजर आती हैं।
देखिए, झूठ ना बोलिए, आपने कोई ना कोई औरत खास तौर पर देखी है।
ये खास तौर पर से तुम्हारा क्या मतलब है?
जाइए, मैं आपके राज नहीं खोलना चाहती, मैं अब चलती हूँ।
कहाँ?
एक सहेली के यहाँ, उससे अपना दुखड़ा बयान करूंगी, खुद रोऊंगी और उसको भी रुलाऊंगी। इस तरह कुछ जी तो हल्का हो जाएगा मेरा।
वो दुखड़ा जो तुम्हें अपनी सहेली से बयान करना है मुझे ही बता दो, मैं तुम्हारे गम में शरीक होने का वादा करता हूँ।
आपके वादे? अरे कभी इफा भी हुए हैं?
तुम फिर ज्यादती कर रही हो। मैंने आज तक तुमसे जो भी वादा किया पूरा किया। अभी पिछले दिनों तुमने मुझसे कहा कि चाय का एक सेट ला दो। मैंने एक दोस्त से रुपए कर्ज लेकर बहुत उम्दा सेट खरीद कर तुम्हें ला दिया।
हाँ, बड़ा एहसान किया मुझ पर। अरे वो तो दरअसल आप अपने दोस्तों के लिए लाए थे, उसमें से दो प्याले किसने तोड़े? हाँ जरा ये तो बताइए।
भाई, एक प्याला तुम्हारे बड़े लड़के ने तोड़ा, दूसरा तुम्हारी छोटी बच्ची ने।
सारा इल्जाम आप हमेशा उन्हीं पर धरते हैं। अच्छा, अब ये बहस बंद हो तो मुझे नहा धोकर कपड़े पहनना और जूड़ा करना है।
देखो, मैंने आज तक कभी सख्तगिरी नहीं की, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नरमी से पेश आता रहा हूँ, मगर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बाहर नहीं जा सकती।
अजीबा, बड़े आए मुझ पर हुक्म चलाने वाले, आप हैं कौन?
इतनी जल्दी भूल गई, मैं तुम्हारा खाविंद हूँ।
अरे मैं नहीं जानती ये खाविंद क्या होता है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं बाहर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है।
तुम नहीं जाओगी, बस ये मेरा फैसला है।
अरे फैसला तो अब अदालत ही करेगी।
अदालत का यहाँ क्या सवाल पैदा होता है भाई, मेरी समझ में नहीं आता आज तुम कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हो। तुक की बात करो, जाओ नहा लो ताकि तुम्हारा दिमाग किसी हद तक ठंडा हो जाए।
आपके साथ रहकर मैं तो सर से पैर तक बर्फ हो चुकी हूँ, बर्फ।
कोई औरत अपने खाविंद से खुश नहीं होती, वो बेचारा कितना ही शरीफ क्यों ना हो, इसमें कीड़े डालना उसकी सरिष्ठ में दाखिल है। मैंने तुम्हारी कई खताएं और गलतियां माफ की हैं।
हाँ, मैंने खुदा ना खास्ता कौन सी खता की है?
अभी पिछले बरस तुमने शलजम की शब देख बड़े ठाट से पकाने का इरादा किया, शाम को चूल्हे पर हंडिया रखकर तुम ऐसी सोई कि उठकर जब मैं बावर्ची खाने में गया तो देखा कि देगची में सारे शलजम कोयले बने हुए हैं, उनको निकालकर मैंने अंगीठी सुलगाई और चाय तैयार की, तुम तो सो रही थी।
देखिए, मैं ये बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ।
इसलिए कि इसमें झूठ का एक जर्रा भी नहीं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि औरत को सच और हकीकत से क्यों चिढ़े। मैं अगर कह दूं कि तुम्हारा बायां गाल तुम्हारे दाएं के मुकाबले में किसी कदर ज्यादा मोटा है तो शायद तुम मुझे सारी उम्र न बख्शो, मगर ये हकीकत है जिसे शायद तुम भी अच्छी तरह महसूस करती हो। देखो देखो, ये पेपर वेट वहीं रख दो, उठा के मेरे सर पर दे मारा तो थाना थनव्वल हो जाएगा।
ये पेपर वेट मैंने इसीलिए उठाया था कि ये आपके चेहरे के ऐन मुताबिक है, इसके अंदर जो हवा के बुलबुले से हैं वो आपकी आंखें हैं, और ये जो लाल सी चीज है ना वो आपकी नाक है जो हमेशा सुर्ख रहती है। मैंने जब आपको पहली मर्तबा देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि आपकी आंखें गाय की आंखें हैं और कॉकरोच औंधे मुंह बैठा है।
तुम्हारा जी हल्का हो गया?
मेरा जी कभी हल्का नहीं होगा। आप मुझे जाने दीजिए, नहा धोकर मैं शायद यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं।
जाने से पहले ये तो बता जाओ कि ये जाना किस बिना पर है।
मैं बताना नहीं चाहती, आप तो अव्वल दर्जे के बेशर्म है।
भाई, तुम्हारी इस सारी गुफ्तगू का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, मालूम नहीं तुम्हें मुझसे क्या शिकायत एकदम पैदा हो गई।
अच्छा, जरा अपनी कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालिए।
ये अब मेरा कोट कहाँ है?
रुकिए, लेकर आती हूँ।
मेरे कोट में क्या हो सकता है भाई, विस्की की बोतल थी वो तो मैंने बाहर ही खत्म करके फेंक दी थी, लेकिन हो सकता है रह गई हो।
लीजिए ये रहा आपका कोट।
अब मैं क्या करूं?
उसकी अंदर की जेब में हाथ डालिए और उस लड़की की तस्वीर निकालिए जिससे आप आजकल इश्क लड़ा रहे हैं।
लाहौल वाला, तुमने मेरे औसान खता कर दिए थे भाई। ये तस्वीर मेरी जान, मेरी बहन की है, जिसको तुमने अभी तक देखा भी नहीं। अफ्रीका में है ये, तुमने ये खत नहीं देखा? साथ ही तो था, ये लो।
हाय, कितनी खूबसूरत लड़की है ये, मेरे भाईजान के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, है ना?
शुक्रिया।